आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online, और radio पर।
नमस्कार, नमस्ते, सुस्वागतम। मेरा नाम है स्वाति शर्मा और SBS के मेलबर्न स्टूडियो से हिंदी कार्यक्रम लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आज यानी शुक्रवार 13 मार्च 2026 को। आज है साल का 72वां दिन। हमेशा की तरह आइए सबसे पहले आज के प्रोग्राम का शुभारंभ करते हैं इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरुन लोगों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हुए, साथ ही जिनकी भूमि से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है उन सभी मूल निवासियों और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों का भी हम आदरपूर्वक सम्मान करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में क्या क्या होगा उसके लिए आइए एक फटाफट नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम की रूपरेखा पर। शो का सबसे पहले भाग होगा खबरों से भरा। जानेंगे पहले आज के दिन की मुख्य सुर्खियां और फिर एक रिपोर्ट में जानेंगे कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ईरान युद्ध के चलते हो रही पेट्रोल की तंगी से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का फैसला लिया है। फिर नजर डालेंगे आज के लिए भारत की मुख्य खबरों पर और साथ ही ऑस्ट्रेलिया हाल ही में वीजा से जुड़े कुछ नए बदलावों की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की है, वो बदलाव क्या है एक अंश में जानेंगे। साथ ही SBS हिंदी फ्लैशबैक से भी एक अंश होगा जिसमें हम सुनेंगे कि गूगल पर बीमारियों का इलाज ढूंढने के फायदे तो हमें पता है पर उसके नुकसान क्या हो सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। और आखिर में शो के मूड को बनाएंगे संगीत में कुछ प्यारे से मीठे से गीतों के साथ, नए पुराने। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप मुझे अभी लिख भेज सकते हैं, नंबर है 0439-799-767 और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज ही शो में उसे बजा दूं। अपनी मौजूदगी का एहसास भी मुझे कराना मत भूलिएगा अपने संदेशों के जरिए। कौन कौन है आज मेरे साथ जुड़ा हुआ, किस शहर से, जरूर बताइएगा। तो बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में, आज का सवाल भी आपके लिए खास, पर आइए सबसे पहले एक जायजा ले लेते हैं आज के मुख्य समाचारों का। नमस्कार, शुक्रवार 13 मार्च 2026 के मुख्य समाचारों के साथ मैं हूं स्वाति शर्मा। विपक्ष के नेता एंगस टेलर ने ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन पर आरोप लगाया है कि बढ़ते मिडल ईस्ट संकट के दौरान वह ऑस्ट्रेलिया की ईंधन आपूर्ति को सुरक्षित करने में नाकाम रहे हैं। एल्बनीजी सरकार आज आपातकालीन ईंधन भंडार सक्रिय कर रही है और क्षेत्रीय कमी से निपटने के लिए पेट्रोल और डीजल के अपने भंडार का 20% जारी कर रही है। यह कदम 2022 के बाद पहली बार उठाया गया है। वहीं नेशनल पार्टी की सेनेटर ब्रिजिट मैकेंजी ने फेडरल सरकार से मांग की है कि वह केवल पत्र लिखने की बजाय ACCC का इस्तेमाल करे और पूरे ऑस्ट्रेलिया में ईंधन की कीमतों में मुनाफाखोरी के मामलों में कार्रवाई करे। सेनेटर मैकेंजी का कहना है कि यदि सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ऑस्ट्रेलियाई परिवारों और उद्योगों को पेट्रोल पंप पर अनुचित कीमत चुकानी पड़ेगी। संपत्तियों पर नेगेटिव गियरिंग और कैपिटल गेन्स टैक्स रियायतें देने की वजह से फेडरल बजट पर पड़ने वाली लागत अगले दशक में लगभग दोगुनी होकर $181 बिलियन तक पहुंच सकती है यदि नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये आंकड़े आज 13 मार्च को प्रकाशित पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस के विश्लेषण में सामने आए हैं जिसे ग्रीन्स पार्टी के अनुरोध पर तैयार किया गया था। मई में पेश होने वाले फेडरल बजट से पहले सुधार के विकल्पों पर चर्चा चल रही है जिसमें कैपिटल गेन्स टैक्स डिस्काउंट और नेगेटिव गियरिंग में बदलाव शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि अमेरिका और इसराइल के ईरान के साथ युद्ध के कारण ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के चलते महंगाई 4% से ऊपर जा सकती है। अर्थशास्त्रियों और विश्लेषकों के बीच व्यापक सहमति है कि केंद्रीय बैंक मंगलवार 17 मार्च को होने वाली अगली बैठक में ब्याज दरें बढ़ा सकता है जिसका असर मॉर्गेज रखने वाले लोगों पर पड़ेगा। कॉमनवेल्थ बैंक भी मई में एक और दर वृद्धि का अनुमान लगा रहा है। विक्टोरिया सरकार ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ऐसे कानून ला रही है जिसके तहत हर प्रॉपर्टी बिक्री की कीमत को तुरंत सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। विक्टोरिया के कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री निक स्टाइकोस ने बताया कि जल्द ही एजेंटों और घर के मालिकों को कॉन्ट्रैक्ट के अनकंडीशनल होने के बाद बिक्री की कीमत सार्वजनिक करनी होगी। इस कानून का उद्देश्य अंडर कोटिंग की उस प्रथा को रोकना है जिसमें रियल एस्टेट एजेंट घरों को उनकी अंतिम बिक्री कीमत से काफी कम कीमत पर मार्केट करते हैं। यह बिल जून में विक्टोरियन संसद में पेश किया जाएगा। अमेरिका के मिशिगन राज्य में एक राइफल से लैस हमलावर को मार दिया गया है जिसने एक वाहन को सिनेगॉग में घुसा दिया था। अधिकारियों ने इसे यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया हमला बताया है। सिनेगॉग के अंदर मौजूद 140 से अधिक बच्चों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। और अब खबर भारत से। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच लगातार ऊंची तेल कीमतों को लेकर चिंताओं के कारण शुक्रवार को भारतीय रुपया अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इससे वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है और भारत की अर्थव्यवस्था पर जोखिम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रुपया प्रति डॉलर 92.39 तक गिर गया, जो पिछले सत्र में बने 92.3575 के रिकॉर्ड निचले स्तर से भी नीचे है। आज के लिए मुख्य समाचारों में बस इतना ही। अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए SBS हिंदी के साथ, हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi या फिर SBS हिंदी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के जरिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की सुर्खियां। आगे बढ़ें, अगली रिपोर्ट की तरफ बढ़ें, उससे पहले बारी है आज के सवाल की। तो आज मैं आपको अंग्रेजी में एक हिंदी गाने के बोल बताऊंगी और आपको बताना है कि ये कौन सा हिंदी गाना है। तो शब्द हैं, वन क्लेवर लेडी डूइंग मेकअप एंटरिंग इन माय माइंड थ्रू द डोर आई एम डाइंग। फिर से दोहरा देती हूँ, वन क्लेवर लेडी डूइंग मेकअप एंटरिंग इन माय माइंड थ्रू द डोर आई एम डाइंग। भेज दीजिए अपने जवाब, नंबर है 04397997667। जब तक आप दौड़ाते हैं अपने दिमाग के घोड़े, हम बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की ओर। तो हाल ही में सरकार ने ईंधन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कुछ निर्णय लिए हैं। अब क्या है ये उपाय और क्या ये उपाय पर्याप्त हैं या नहीं, और कैसे फ्यूल की आसमान छूने वाली कीमतें घर और परिवारों के मासिक बजट को तहस नहस कर रही हैं, इसी बारे में है हमारा अगला अंश, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं भव्या पांडे।
दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के ईंधन मानकों यानी पेट्रोल स्टैंडर्ड्स को 2 महीने के लिए ढील दी जाएगी ताकि घरेलू बाजार यानी डोमेस्टिक मार्केट में ईंधन मतलब फ्यूल की सप्लाई बढ़ाई जा सके। दरअसल फेडरल सरकार का कहना है कि इस बदलाव से ऑस्ट्रेलिया की सप्लाई में हर महीने अतिरिक्त 100 मिलियन लीटर पेट्रोल जुड़ जाएगा। आपको बता दूं कि ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवन ने कहा है कि घरेलू ईंधन आपूर्ति बढ़ाने के लिए 60 दिनों के लिए ईंधन मानकों में ढील दी जाएगी। 2 महीनों तक अधिक सल्फर वाले ईंधन को ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि पहले इसे निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया जाता था।
This is a practical measure, 100 million litres of extra fuel each month, which will be prioritised for regional Australia with a particular emphasis on Queensland. This is action taken by the government. The opposition didn't call for this. The government has done it because it is a practical action to help farmers, to help regional Australians through this immediate crisis.
साथ ही बोवन ने ये भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की उस योजना में अपना योगदान तय कर रहा है, जिसके तहत वैश्विक भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अन्य IEA सदस्य देशों की तरह इस वैश्विक सामूहिक कार्रवाई का समर्थन करता है। आपको बता दूं कि ईंधन मानकों में ये अस्थायी ढील ऐसे समय में दी जा रही है जब फेडरल सरकार ने पेट्रोल विक्रेताओं को अनुचित रूप से कीमत बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी है। ट्रेजरर जिम चार्मर्स ने ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन, जिसे ACCC कहा जाता है, को संदिग्ध कीमत बढ़ोतरी पर 100 मिलियन डॉलर तक का जुर्माना लगाने की शक्ति दे दी है। उन्होंने कंज्यूमर कमीशन को पेट्रोल विक्रेताओं पर तुरंत जुर्माना लगाने का अधिकार भी दिया है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर चार्मर्स ने कहा कि सरकार पेट्रोल विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई करेगी, जिसमें ज्यादा जुर्माना और कड़ी निगरानी शामिल है।
We have announced some important new steps to crack down on any retailers who are doing the wrong thing. We have doubled the fines, we've dramatically increased the surveillance of these suspicious price spikes that people are seeing in communities around Australia. And we've also empowered the ACCC to work closely with industry where there are shortages, particularly in regional areas.
साथ ही उन्होंने कहा है कि ACCC ईंधन बाजार पर नजर रखते हुए प्राइस गाउजिंग यानी अनुचित तरह से कीमत बढ़ाने की कानूनी परिभाषा तय करेगा। उन्होंने बताया कि सरकार पेट्रोल विक्रेताओं को चेतावनी दे रही है कि वे मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष का फायदा उठाकर उपभोक्ताओं से ज्यादा पैसे न लें।
Yeah, the message from the Albanese Labor government is really clear to the petrol retailers. Don't take motorists for a ride. Don't treat Australians like mugs. Do not use this opportunity of what's happening in the Middle East to do the wrong thing by people. But more than convey that message to the petrol retailers, we have taken these really important steps just yesterday, not even 24 hours ago. They build on the steps that we had already taken to make sure that people are getting fuel when they need it, that the prices are fair. It's for the ACCC to determine some of those legal definitions around gouging and the like, but they've certainly got the tools.
वहीं स्वतंत्र सांसद मोनिका रयान ने सरकार की प्रतिक्रिया की आलोचना की है। उनका मानना है कि ये जो योजना है, ये अनुमानित कीमत बढ़ोतरी को रोकने में नाकाम रही है। उनका कहना है कि इससे ड्राइवरों और किसानों को नुकसान हो रहा है। वे कहती हैं कि इंडस्ट्री से डॉक्टर चामर्स की निजी बातचीत कीमतों में बढ़ोतरी रोकने में सफल नहीं रही है और ACCC को और ज्यादा सख्ती से काम करना चाहिए।
I think if you look at the people queuing for petrol at Bowser's this week, what you're seeing is people's anxiety about our fuel supply and about our sovereign capacity to provide people with the energy supply that they need affordably.
आपको बता दूं कि नई नेशनल्स पार्टी के नेता मैट कैनेवॉन ने सरकार की ACCC कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि केवल जांच करने से तुरंत फ्यूल की कमी की समस्या हल नहीं की जा सकती है। वहीं शैडो रक्षा मंत्री जेम्स पैटिसन का कहना है कि ये ईंधन संकट सरकार की अपनी नीतियों का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल कंपनियां ACCC की बात नहीं मान रही हैं क्योंकि सरकार अपने पास मौजूदा हस्तक्षेप के अधिकारों का इस्तेमाल ही नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की जिम्मेदारी सीधा प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी पर डाली है। उनका कहना है कि जब पहले लेबर पार्टी ने पेट्रोल की कीमतों के लिए मॉरिसन सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, तो अब प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी को भी इस संकट की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
Let's remember it was only a few years ago that the Prime Minister was running around the country taking photos of billboards outside petrol stations saying that petrol at $1.78 following the Ukraine war was Prime Minister Scott Morrison's fault. So petrol at well over $2 is obviously now the Prime Minister's personal responsibility which he must address.
बढ़ती पेट्रोल की कीमतों का आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है और ये सभी कदम क्या सच में एक आशा की उम्मीद लेकर आए हैं? इस संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज जुड़े हैं मेलबर्न के टॉनेट शहर से विशेष मल्होत्रा। आपको बता दूं कि विशेष मल्होत्रा जो हैं, उनका कार्स का रेंटल बिजनेस है। तो विशेष, सबसे पहले तो आपका SBS हिंदी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष, मैं जानना चाहूंगी कि हाल ही में पेट्रोल की जो कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, इसने आपके जीवन पर निजी तौर पर क्या प्रभाव डाला है? साथ ही मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि एक हफ्ते में या एक महीने में आप कितनी बार अपनी जो गाड़ी है वो निकालते हैं और पेट्रोल का जो ये खर्चा है, इसकी बढ़ती कीमतों से आपका जो मंथली बजट है वो किस तरह से अब प्रभावित हो रहा है?
मेरा हर हफ्ते का यूजुअली पेट्रोल $100 का लग जाता था और अब देखते देखते वही सेम चीज मुझे $125 तक की हो गई है, जो कि हर हफ्ते मुझे $25 ऊपर देने पड़ते हैं। तो देखते ही देखते हर महीने मुझे नियरली अब $100 ऊपर देने पड़ते हैं, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल है मेरे लिए। एंड देखते ही देखते इन्फ्लेशन साथ में लोगों की नौकरियों का वही सेम अर्निंग आ रही है, तो इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। जो ये वॉर चल रहा है US और ईरान का, तो इससे हम जैसों को इतने दूर बैठे ऑस्ट्रेलिया में काफी इम्पैक्ट हो रहा है।
विशेष, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आपका जो बिजनेस है वो भी इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ऐसे में आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो कार्स की बिक्री पर निर्भर करती होगी, तो फ्यूल की इन बढ़ती कीमतों ने क्या किसी भी तरह से आपके उद्योग को भी प्रभावित किया है? किसी तरह की गिरावट आपने देखी है?
100% गाड़ियों का काम रेंटल का थोड़ा कम हो गया है, लोगों की कम इंक्वायरी आ रही है क्योंकि तेल महंगा हो गया, इंश्योरेंस बढ़ गई है, सब कुछ महंगा हो गया। एंड हमारे बिजनेस में हम बहुत सस्ती रेट पर गाड़ियां देते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और हमारी कम्युनिटी को हेल्प कर पाए। तो काम थोड़ा धीरे हो गया है, मुझे लगता है तेल के बढ़ने से ही बहुत ज्यादा काम पर इफेक्ट आ रहा है।
विशेष प्राइस गाउजिंग की ये तकनीक और साथ ही डोमेस्टिक फ्यूल की ओर सरकार जिस तरह से जोर दे रही है, क्या आपको लगता है ऐसी कुछ योजनाएं फ्यूल प्राइसेस को कम करने में मदद कर सकती हैं?
मुझे लगता है कि बदलाव लाने के लिए तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे कि सरकार ने ये चीज सोची और ये एक वल्नरेबल सिचुएशन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करी। बट मुझे लगता नहीं है कि जो चीज पहले $1.70 की होती थी कि वो वापस आएगी। जो चीज एक बार आसमान को टच कर जाए तो वो रेट उसी के आसपास ही घूमता है।
विशेष आपका SBS हिंदी से आज जुड़ने के लिए और इस संदर्भ में हमें और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे।
SBS हिंदी पर आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ। दोस्तों यहां समय हो गया है पहले अंतराल का, पर जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देती हूं। इन अंग्रेजी शब्दों को सुनकर आपको बताना है कि ये कौन सा मशहूर हिंदी गाना है। तो बोल है वन क्लेवर लेडी डूइंग मेकअप एंटरिंग इन माई माइंड थ्रू द डोर आई एम डाइंग। नंबर है 04397997667। अपने जवाबों के साथ अपना नाम भेजना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं मैं स्वाति शर्मा SBS के हिंदी कार्यक्रम में। तो दोस्तों अब समय है भारत की खबरों का जायजा लेने का, जिसे आपके लिए लेकर आ रहे हैं नई दिल्ली से विश्वरत्न श्रीवास्तव।
भारत ने पश्चिम एशिया संकट पर अपनी चिंता को दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और बुनियादी ढांचों को पहुंच रहे नुकसान पर अपनी चिंता साझा की है। बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति को भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच भी संपर्क बना हुआ है। इस बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कहते हैं,
पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।
लगभग 9,000 भारतीयों के ईरान में होने का अनुमान है। तेहरान में भारतीय दूतावास पूरी तरह से खुला हुआ है। ईरान में फंसे लोगों की मदद दूतावास कर रहा है। रणधीर जायसवाल इस बारे में कहते हैं,
बहुत सारे ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो इच्छुक हैं कि वहां से ईरान से वापस आएं और उसके लिए वो लोग सड़क मार्ग से आर्मेनिया और अजरबैजान जाके और इन दोनों देशों से जो कमर्शियल ऑप्शंस है हवाई जहाज का उसको लेके वो हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं। उनको हमारी एम्बेसी मदद कर रही है वीजा के साथ और साथ ही साथ जाकि वहाँ आपको बॉर्डर पार करना पड़ता है, वहाँ पे जो गतिविधियाँ होती है उनके साथ हमारी एम्बेसी उनको मदद कर रही है। हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है खास उन लोगों के लिए जो कि लैंड बॉर्डर से आर्मेनिया और अजरबैजान को पार करके वहां से वापस भारत आना चाहते हैं।
पश्चिम एशिया संकट का असर भारत पर भी पड़ रहा है। तनाव के चलते कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने की आशंका है। हालांकि सरकार ने फिलहाल स्थिति को संतोषजनक बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा,
भारत में आज हम लगभग 40 देशों से क्रूड आयात करते हैं। Further, the OMCs have secured various crude cargoes from different sources, and as a result of this diversification, about 70% of our crude import is now coming from routes outside the Strait of Hormuz, compared with about 55% earlier. आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तब भी लगभग 2 cargoes भारत की तरफ चल पड़े हैं एंड विद इन फ्यू डेज दे विल अराइव विच विल फर्दर स्ट्रेंथन द क्रूड सप्लाई पोजिशन इन द कंट्री. आज हमारी रिफाइनरीज आर ऑपरेटिंग एट द हाइएस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और कुछ रिफाइनरीज आर ऑपरेटिंग एट मोर देन 100% ऑफ देयर कैपेसिटी.
देश में एलपीजी की मांग अचानक बढ़ गई है. इसके कालाबाजारी होने के मामले भी सामने आ रहे हैं. सरकार स्थिति को सामान्य बता रही है. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर झूठा भरोसा देने का आरोप लगाया है.
झूठ बोल बोल के देश को भरमाने का काम मोदी जी करते हैं. ये देश के साथ एक विश्वासघात है और ये महंगाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महंगाई है. इस पे तो सीधे सीधे मोदी महंगाई और मोदी संकट लिख देना चाहिए. 60 रुपए गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया घरेलू और 115 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ गया. ये समस्या क्यों आई? आपको मालूम था 60% कच्चा तेल हार्मोज के समुद्री मार्ग से आता है. आपको मालूम था 50% गैस हार्मोज के समुद्री मार्ग से आती है. बावजूद इसके आपने जानबूझ के ईरान से झगड़ा मोल ले लिया ट्रंप और इजराइल के चक्कर में जो आपको रोज अपमानित करते हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने एलपीजी की कमी को लेकर विपक्ष के हो हल्ले पर अपरोक्ष रूप से पलटवार किया है. गुरुवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा,
आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है. कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं. मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं.
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है.
पीएम इज सेइंग दैट देयर इज नो नीड टू पैनिक बट पीएम हिमसेल्फ इज पैनिक्ड फॉर कंप्लीटली डिफरेंट रीजंस. सो ही इज हिमसेल्फ पैनिक्ड. ही इज पैनिक्ड बिकॉज ऑफ एपस्टीन. ही इज पैनिक्ड बिकॉज ऑफ अदानी केस.
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी की आलोचना की है. संसद के नियमों मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा,
Honorable Speaker, in consultation with the government, permitted Sri Rahul Gandhi as a special case to raise the issue of LPG. And we sought the time from Rahul Gandhi. We asked him, when are you convenient to speak? And he said he wants to speak at 4:00. Even that time was granted to him as a special case. But he didn't speak about LPG case. He was talking about something else. He was attacking Prime Minister. This leader of opposition seems to be incorrigible. We are very helpless.
बयानबाजी के चलते राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है. वैसे मौसम भी तेजी से बदल रहा है. कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ने लगी है. मुंबई में आज लू चलने की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने कहा है कि आज और कल यानी अगले दो दिन भीषण गर्मी पड़ सकती है. गुजरात और मध्य प्रदेश में भी लू चलने की चेतावनी है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश और एनसीआर सहित उत्तरी राज्यों में सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान लगाया गया है. भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही. मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए.
SBS हिंदी पर आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ. इसी बीच आपके मैसेजेस मेरे पास आ गए हैं. राजेंद्र वोरा जी, आपका मैसेज आ गया है, आपकी फरमाइश का गीत आज मैं शो में जरूर बजा दूंगी. और उसके अलावा मेरे पास जवाब आए हैं मेरे सवाल के. एक तो आपने नाम नहीं भेजा है, सिर्फ जवाब भेजा है, सही जवाब भेजा है. और उसके अलावा संदीप जी और तेजस व्यास जी, आपके जवाब भी बिल्कुल सही है. बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आप जो लोग सुन रहे हैं आपने अभी तक जवाब नहीं भेजे हैं, सवाल है इन अंग्रेजी शब्दों को सुनकर आपको बताना है कि ये कौन सा हिंदी गाना है. शब्द हैं वन क्लेवर लेडी डूइंग मेकअप एंटरिंग इन माय माइंड थ्रू द डोर आई एम डाइंग. नंबर है 04397997667. फिलहाल आगे बढ़ते हैं भारत की रिपोर्ट के बाद. अब आगे वक्त है अगले अंश का जिसे मैं लेकर आई हूं एसपीएस हिंदी फ्लैशबैक से. तो आजकल इंटरनेट गूगल और अब तो एआई पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तो कोई भी आसानी से और मुफ्त में पा सकता है. अब ये जानकारी हमारी मदद तो करती है पर इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं इति दीवान की इस रिपोर्ट में.
तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नितिन धरवाकर से जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है. डॉक्टर नितिन, एसपीएस हिंदी से बात करने के लिए धन्यवाद.
धन्यवाद.
काफी लोग स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और आत्मनिदान के लिए गूगल का रुख करते हैं, इससे स्वास्थ्य पर क्या असर होता है?
इससे बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं. पहले तो इंटरनेट पर स्वयं निदान करना जो व्यक्ति करता है इसके मानसिक स्वास्थ्य पे और कल्याण पे विभिन्न प्रभाव हो सकते हैं. इंक्रीज एंग्जायटी यानी चिंता बहुत बढ़ सकती है जब व्यक्ति ऐसे कंडीशंस को देखता है इंटरनेट पे जो थोड़े बहुत उनके सिम्टम को मैच करता है, लेकिन बहुत जल्दी आत्मनिदान करने से बहुत ही ज्यादा चिंतित हो सकता है. एक दूसरा शब्द है साइपरकॉन्ड्रिया. ये शब्द उन व्यक्तियों को वर्णित करता है जो ऑनलाइन पाई गई जानकारी के आधार पर लगातार अपने स्वास्थ्य के बारे में खोज और चिंता करते हैं, और ये इतनी बढ़ सकती है कि ये उनको एंजाइटी या डिप्रेशन में के जैसे कंडीशन को भी जागृत कर सकती है जिसके लिए फिर उनको ट्रीटमेंट लगती है.
डॉक्टर, कोई ऐसी केस स्टडी जो आप हमसे साझा कर सकते हैं जहां पेशेंट का स्वास्थ्य और बिगड़ गया या किसी तरीके का गलत इलाज हुआ?
हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे केस स्टडी. एक मैं आपको वर्णित करता हूँ. 30 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपर था ईथन, और उसको हमेशा कॉन्सेंट्रेशन और समय प्रबंधन में संघर्ष करता था. हाल ही में उसने लगातार उदास महसूस भी करना शुरू किया था, और उसकी सब शौक थे जिम जाना या तो कायाकिंग करना, वो भी उसने बंद कर दिया था. तो जवाब ढूंढने के लिए वो डॉक्टर के पास नहीं गया, लेकिन इंटरनेट पे खोजना उसका रोज का काम हो गया. कई वेबसाइट्स और फोरम्स में उसने ब्राउज किया, और इथन को यकीन हो गया कि उसको एडीएचडी है, क्योंकि उसको कॉन्सेंट्रेशन करने में दिक्कत हो रही थी और थोड़ा एजिटेशन यानी बेचैनी भी महसूस होती थी. तो ये स्वयं निदान उसने कर दिया. उसके बाद उसने क्या किया, उसने मानकर कि उसे एडीएचडी है, उसने ऑनलाइन नॉन प्रिस्क्रिप्शन स्टिमुलेंट्स खरीदना शुरू किया, सोचकर कि ये उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बेहतर बनाएगा. लेकिन उसका बेचैन महसूस करना और भी बिगड़ गया
जी.
और उसका कॉन्सेंट्रेशन तो और भी बिगड़ गया, और उसकी एक्टिविटीज में जो थोड़ी भी रुचि बची थी वो भी चली गई. इसलिए ये डिलेड डायग्नोसिस या देरी से चिकित्सा नहीं हुई, इसलिए उसका मूड लगातार गिरते ही गया और भी बहुत ही उदास हो गया. उसकी ट्रीटमेंट बहुत डिले हो गई और उसके सब संबंध में भी प्रभाव हो गया. उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई और उसके जॉब पे भी उसको वार्निंग्स मिलने लगे. इसलिए एक बहुत ही बड़ी घटना घड़ी वर्क सिचुएशन में जहां उसने क्रूशियल डेडलाइन मिस कर दी. इसलिए उसके बाद उसने सोचा कि अभी तो मेरे को उसके माँ बाप ने बताया कि अभी तो साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा. इसलिए उसको जीपी के पास गया रेफरल लेके, साइकियाट्रिस्ट के पास गया. फिर साइकियाट्रिस्ट ने उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोज किया और बोला कि हाँ, उसके पास कोई तो सिम्टम्स थे जो ADHD के थे, लेकिन उसका प्राइमरी डायग्नोसिस डिप्रेशन था. उसके बाद ऑफकोर्स उसको मेडिकेशन मिला, ट्रीटमेंट मिला, सब ठीक हो गया. लेकिन ठीक होने के बाद भी उसको जो रिलेशनशिप उसने खो दिए थे वर्क में उसके खुद के गर्लफ्रेंड के साथ, वो तो उसके चले गए. इसलिए ये केस हाईलाइट करता है कि डेंजर क्या हो सकता है आत्मनिदान का, स्पेशली जब सीरियस कॉम्प्लेक्स साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि ये मानसिक कंडीशंस जो होती है जनरली इंडिविजुअल प्रोफेशनल इवैल्यूएशन की जरूरत होती है जाके निदान ठीक हो और ट्रीटमेंट भी जल्दी के जल्दी और अच्छी ट्रीटमेंट मिले.
जी डॉक्टर, ऐसे कोई गाइडलाइंस हैं जिससे लोग इंटरनेट को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं?
गाइडलाइंस के लिए इंटरनेट तो अच्छी जगह है, और अभी इंटरनेट गूगल और दूसरे सर्च इंजिन और अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI भी आ गया है.
जी,
ये अपने बारे में कोई भी पढ़ना है तो पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन जब आपकी मानसिक स्थिति या फिजिकल सिम्टम्स खुद के हो तो ये जरूरी है कि आप अप्रोप्रिएट डॉक्टर या स्पेशलिस्ट के पास जाओ, क्योंकि गलत भी हो सकता है. जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल में बताया था, इंटरनेट अच्छी जगह है लेकिन उसको बैलेंस में देखना चाहिए. खुद का मानसिक या फिजिकल सिम्टम्स हो तो जल्दी से जल्दी अप्रोप्रिएट डॉक्टर के पास जाना जरूरी.
जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नितिन.
धन्यवाद.
तो दोस्तों, ईति की इस रिपोर्ट के बाद अब समय है एक और अंतराल का. अंतराल पर जाने से पहले एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देती हूँ सवाल. आपको इन शब्दों को सुनकर बताना है कि ये कौन सा हिंदी गाना है. शब्द है वन क्लेवर लेडी डूइंग मेकअप एंटरिंग इन माय माइंड थ्रू द डोर. आई एम डाइंग. नंबर है 0439799767. आप भेजिए अपने जवाब. मैं हाजिर होती हूँ जल्दी से एक छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ. मैं स्वाति शर्मा SBS हिंदी के प्रोग्राम में. तो कुछ मैसेजेस मेरे पास आ गए हैं जिन्हें पढ़ लेती हूँ. स्मृति शर्मा जी सिडनी से, उन्होंने जवाब भेजा है जो सवाल मैंने आज पूछा आपसे. और जहीर जी, आपका जवाब भी मिल गया है, सही जवाब मिला है. और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है जिसे पूरा पढ़ने का मेरा मन है और आपके साथ बांटने का मेरा मन है. ये कहते हैं, नमस्ते स्वाति जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा. हम कार में बाहर जा रहे हैं तो पूरा परिवार साथ पे सुन रहे हैं. द बॉलीवुड सॉन्ग ऑन द इंग्लिश ट्रांसलेशन इज, आगे उनका जवाब है जो मैं अभी नहीं बताऊंगी. कीप ब्रिंगिंग सच नाइस प्रोग्राम, हैप्पी फ्राइडे एकता मनीष यूवी रिदम एंड दादी सुशीला जी. बहुत बहुत धन्यवाद. आपका मैसेज पढ़ के मेरा मन बहुत खुश हो गया. बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप शो सुन रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं. इसके अलावा मीनाक्षी चोपड़ा जी मेलबर्न से, आपका भी जवाब मेरे पास आ गया है, सही जवाब है. तो अगर आपने भी सवाल नहीं सुना है और लेट ज्वाइन किया है शो को, तो सवाल है इन शब्दों को सुनकर बताना है आपको कि ये कौन सा हिंदी गाना है. शब्द है वन क्लेवर लेडी डूइंग मेकअप एंटरिंग इन माई माइंड थ्रू द डोर. आई एम डाइंग. नंबर है 0439799767. तो बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में. जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि सरकार ने कुछ वीजा, खास तौर से पोस्ट स्टडी वीजा यानी सब क्लास 485 वीजा में कुछ नए बदलाव किए हैं. क्या हैं ये नए बदलाव, आइए सुनते हैं इस अंश में नताशा कॉल से.
ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कुछ पोस्ट स्टडी वीजा के लिए आवेदन शुल्क दुगना कर दिया है. हालांकि ये बदलाव पैसिफिक और टिमोर लेस्टे देशों के वीजा धारकों पर लागू नहीं होगा. उच्च शिक्षा के बाद प्राप्त होने वाला ये वीजा, जिसे 485 सब क्लास वीजा के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की अनुमति देता है. तो इस साल की शुरुआत में कौन से वीजा नियम बदल दिए गए हैं, आइए सुनते हैं नेहा सिंह से जो एक माइग्रेशन एजेंट हैं. तो नेहा जी, हमें ये बताइए कि 485 सब क्लास को लेकर क्या बदलाव घोषित किए गए हैं.
नताशा, अभी डिपार्टमेंट ने 485 की जो डिपार्टमेंट की फीस थी वो काफी इंक्रीज कर दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए. इट यूज टू बी 2300 फॉर अ प्राइमरी एप्लीकेंट. 1st of March से जो भी अप्लाई कर रहे हैं अपना 485 टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा, उनकी फीस इज नाउ 4,600 प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए, विच इज ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट.
जी,
सो इट्स अ वेरी ह्यूज जंप डिपार्टमेंट हैज गिवन टू द फीस स्ट्रक्चर.
जी नेहा जी, ये बताइए कि 485 वीजा है क्या.
485 वीजा उन लोगों के लिए है नताशा, जिन लोगों ने यहाँ पर स्टडी करा है, 2 साल का स्टडी, बैचलर्स हो सकता है, मास्टर्स हो सकता है, कोई ट्रेड कोर्स में भी हो सकता है, बट इट शुड बी अ 2 इयर्स क्रैकोस रजिस्टर्ड कोर्स. तो जो लोग वो स्टडीज करते हैं 2 साल की कंप्लीट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडीज उनको TR मिलता है, टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा 485 जिसको हम बोलते हैं. डिपेंड्स अपॉन कि उनकी स्टडी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उनका टाइम फ्रेम भी होगा. सो जिन्होंने ट्रेड कोर्स किया उनको 18 महीने का मिलता है वीजा
जी.
जिन्होंने बैचलर्स किया है जनरली उनको 2 साल का, कुछ एलिजिबल पासपोर्ट होल्डर्स को जिन्होंने मास्टर्स किया उनको 3 साल का, बट जनरली अदर पीपल जिन्होंने मास्टर्स कोर्स वर्क किया उनको 2 साल का मिलता है. तो डिपेंड्स अपॉन कि आपकी स्टडी फील्ड ऑफ स्टडी क्या रहा है, उस हिसाब से उसका ड्यूरेशन भी डिसाइड होता है.
तो क्या ये उसमें डिवाइड किया गया है श्रेणियों में?
हाँ जी, काफी सारी इसकी सब क्लासेस है, मतलब कैटेगराइजेशन है. वन इज पोस्ट वोकेशनल एंड वन इज पोस्ट हायर. तो जो लोग ट्रेड कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे जिन्होंने सर्टिफिकेट 3-4 डिप्लोमा किया है, फॉर एग्जांपल शेफ का कुकरी में किया है, कारपेंट्री में किया है, देर आर सो मेनी ट्रेड कोर्सेज, 2 साल की स्टडी है, तो उनको पोस्ट वोकेशनल में वो आएंगे 485 और उनको 18 मंथ्स का ही वीजा मिलता है सिर्फ.
जी.
अभी सपोज किसी ने बैचलर्स किया है या मास्टर्स बाय कोर्स वर्क किया है तो उनको ये वीजा 2 साल का मिलता है, 24 मंथ्स का मिलता है.
जी.
वो पोस्ट हायर स्ट्रीम में आ जाता है, मतलब बैचलर्स एंड और हायर स्टडीज कम इन टू पोस्ट हायर स्ट्रीम. अभी किसी ने अगर कोई मास्टर पासपोर्ट होल्डर है इंडिया का, उन्होंने मास्टर्स बाय कोर्स वर्क किया है तो उनको 3 साल का मिलेगा.
जी.
तो अच्छा. अगर कोई प्राइमरी एप्लीकेंट जो प्राइमरी स्टूडेंट है जिसने स्टडीज कंप्लीट किया और वो अपनी TR एलिजिबल है और अप्लाई कर रहा है फ्रॉम 1st of March 2026 ऑनवर्ड्स, तो उसकी फीस 4,600 ही है.
नेहा जी, कई बार ये जो एप्लीकेंट्स हैं वो एक सेकेंडरी एप्लीकेंट के साथ आते हैं, कभी आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, कभी अपने पार्टनर के साथ आते हैं, तो उनकी फीस स्ट्रक्चर में किस प्रकार चेंजेस आई हैं?
उनकी भी बढ़ गई है, उनकी भी अब 2300 सेकेंडरी एप्लीकेंट की हो गई है.
अच्छा.
जो पहले प्राइमरी की होती थी वो अब सेकेंडरी की 2300 एंड प्राइमरी की 4,600.
अच्छा जी. तो ये जो बदलाव है, ये जो फीस हाइक है, ये क्या पहली बार इतनी अमाउंट से बड़ी है?
बिल्कुल, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग. मतलब डिपार्टमेंट थोड़ा सा 3-4% राइज करता है हर साल फाइनेंशियल ईयर जब नया स्टार्ट होता है, बट दिस इज टू मच. इट्स ऑलमोस्ट 50% राइज हुआ है एकदम से ही.
जी.
एंड दे जस्ट डिड नॉट गिव एनी टाइम फ्रेम, जस्ट एक दिनों में उन्होंने डिसाइड किया एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द नेक्स्ट डे.
जी.
तो जनरली वी एक्सपेक्टेड नियर न्यू फाइनेंशियल ईयर, बट यस इट वाज अनएक्सपेक्टेड राइज इन द वीजा प्राइसेस फॉर द 485 वीजा.
जी. नेहा, ये उन्हीं लोगों पे लागू होगा जो 1 मार्च से अपनी वीजा एप्लीकेशन भरेंगे? जी,
डाल रहे हैं. हाँ जी. जिन्होंने डाल दी है 1 मार्च से पहले.
अच्छा.
पहले उनको तो पुरानी फीस स्ट्रक्चर ही लगा है, बट जो 1 मार्च से या ऑनवर्ड से अब जो अप्लाई करेंगे उनको नई फीस स्ट्रक्चर है.
अच्छा जी. अच्छा, ये भी बताइए कि और कोई नए बदलाव इस साल 2026 में घोषित किए गए हैं सरकार द्वारा?
काफी सारे अनाउंस हुए लास्ट वीक में ही. पिछले दो हफ्तों में डिपार्टमेंट ने काफी अनाउंसमेंट्स करी है. एक मेजर अनाउंसमेंट उन्होंने बोला है कि 11 मार्च 2026 के बाद जो हम ट्रेनिंग वीजा करते थे
जी,
उसमें हमारा मतलब स्टेजेस होती थी स्पॉन्सरशिप नॉमिनेशन एंड वीजा एप्लीकेशन. तो उन्होंने बोला है कि जो अब ट्रेनिंग वीजा करेंगे 11 मार्च के बाद से, उनका पहले नॉमिनेशन अप्रूव होना चाहिए ट्रेनिंग वीजा का, उसके बाद ही वो वीजा एप्लीकेशन डाल सकते हैं. उससे पहले वीजा एप्लीकेशन नहीं डाल पाएंगे जब तक नॉमिनेशन अप्रूव नहीं होगा. तो इट्स अ वेरी बिग न्यूज फॉर पीपल जो ट्रेनिंग वीजा देख रहे थे एज एन ऑप्शन फॉर देम टू By time here, मतलब काफी लोगों के लिए एक गुड ऑप्शन था ताकि वो दूसरे वीजा सब क्लासेस को भी एक्सप्लोर कर सके, बट ये डिपार्टमेंट ने अब बंद कर दिया है.
जी. नेहा, ये भी पूछना चाहती हूँ, ये जो 485 वीजा पे आते हैं, क्या ये दोबारा स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं?
नहीं जी, अब तो ये बंद हो चुका है. पहले यस, TR के बाद लोग स्टूडेंट वीजा यूज करते थे, बट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज कि ये वीजा हॉपिंग है, बार बार वो वीजा यूज कर रहे हैं स्टूडेंट वीजा टू जस्ट टेम्परेली स्टे हियर. तो अब TR होल्डर्स जो है, TR 485 वीजा होल्डर्स, दे कैन नॉट अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीजा फ्रॉम ऑनशोर.
यही नहीं, सरकार ने कुछ देशों के लोगों द्वारा कुछ विशेष वीजा पर ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून भी पेश किया है, जिसके चलते अधिकार समूहों और विशेषज्ञों ने इस कदम की निंदा करते हुए चिंता जताई है कि मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण लोग ऑस्ट्रेलिया में शरण लेने से हिचक सकते हैं। जेन मैकेडम एओ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में लॉ की प्रोफेसर हैं और कैल्डस सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ की फाउंडिंग डायरेक्टर हैं। इस नए बिल के बारे में वो बताती हैं।
The bill was a complete about face from what we saw only a few hours earlier when the immigration minister welcomed with open arms a number of members of the Iranian women's soccer team. So on the one hand, he said, you will have protection here, Australia will keep you safe, welcome. And then turned around and introduced a bill into Parliament, which in essence would have blocked that team from ever coming to Australia in the first place.
तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा पेश किए गए इस नए विधेयक में कुछ लोगों के ऑस्ट्रेलिया आने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित बदलावों के तहत गृह मामलों के मंत्री नामित देशों के उन लोगों के लिए आगमन नियंत्रण निर्धारण जारी कर सकेंगे जो अस्थायी वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर रहे हैं, यानी उन पर 6 महीने तक का प्रवेश प्रतिबंध लगा सकेंगे। इस प्रस्ताव के जारी होने से ठीक पहले गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने एशियाई महिला कप के लिए देश में मौजूद कुछ ईरानी फुटबॉल खिलाड़ियों को मानवीय वीजा प्रदान किया। ये प्रतिबंध जो 6 महीने तक चलेगा इस क्षेत्र में 61,000 मौजूदा वीजा धारकों को प्रभावित कर सकता है, जिनमें से 11,000 इजराइल से हैं, 1,000 अधिक लेबनान से और 7,000 ईरान से। ऑस्ट्रेलिया की इस नीति को देखते हुए ग्रीन्स की नेता लरिसा वाटर्स कहती हैं।
नाउ ऑन द इरानियन वीजा इश्यू, दिस वीजा बैन बाय मिनिस्टर बर्क इज सो क्रूल and so heartless. To be offering help to a handful of young women and then shutting the door to thousands more is just morally bankrupt.
लेकिन क्लेयर शार्प, जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की हेड ऑफ इमिग्रेशन है, ने एक सांसदीय जांच को बताया है कि इन प्रस्तावित कानूनों की आवश्यकता है।
Each visa holder who's coming into Australia on a temporary visa must satisfy us that they are coming for a genuinely temporary purpose. We do have the ability to review that when they're offshore and on an individual basis. If we come to the view that the visa condition is not going to be satisfied, we could cancel the visa. However, we would need to do that currently on the current law, one by one, and it's very resource intensive. It's not possible for us to do that in a practical sense for a large group of people at the same time.
और होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्क कहते हैं कि उनके पास वीजा रद्द करने की शक्ति है।
If you sought a visa at a time that your country was not a war zone and then it becomes a war zone, there are visas out there that in the current context we would not have issued. We do have the power to cancel them right now, but we have to do it individually for each one, and that's just not a practical thing to be able to do. I want the decisions about who comes here permanently to be deliberate decisions made by the Australian government, not an accident of who was coming here for a holiday and then there was a change in global circumstances.
उन्होंने ये भी कहा कि संघर्ष की स्थिति में उन्हें मिलने वाले आवेदनों की संख्या बदल सकती है।
While we do have a conflict, it is scale where the number of visitor visas would be so significant. So the fact that it is well below historically what we might have had for people coming from Iran doesn't change the fact that it's still a big number.
SBS News से हेलेना कृष्णमूर्ति की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए। इस पॉडकास्ट में दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है। अपनी स्थिति पर जानकारी के लिए किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें।
SBS हिंदी पर आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस अंश को या प्रोग्राम में सुने किसी भी अंश को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सा वीडियो कंटेंट हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी है, आप वहां जाकर भी उसे एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है आज की शाम के पहले गीत का। आपके लिए हाजिर है हॉट ऑफ द प्रेस धुरंधर द रिवेंज फिल्म का यह नया गाना। और साथ ही कुछ मैसेजेस भी पढ़ लेती हूँ। अभी अभी वीना विजय जी का मैसेज आया है। डियर स्वाति जी, थैंक यू फॉर प्रेजेंटिंग अ नाइस प्रोग्राम। और साथ में उन्होंने भेजा है अपना जवाब। उसके अलावा शिशिर जी का भी जवाब आया है। जिन्होंने जवाब भेजा है। एक और मैसेज आया है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। साथ ही मीनाक्षी चोपड़ा जी मेलबर्न से, आपका भी मैसेज मुझ तक पहुंच गया है। तो इस मस्ती भरे गाने से शुरुआत हो गई है वीकेंड की। इसके साथ ही वक्त हो गया है प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का। ब्रेक इस पार चलेंगे और चलाएंगे गीत भी लगातार आपके लिए, तो कहीं ना जाइएगा, जुड़े रहिए SBS हिंदी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं स्वाति शर्मा के साथ SBS हिंदी पर। प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव है और SBS पर चल रही है इस वक्त सुरों की महफिल। तो प्रोग्राम का अगला गाना राजेंद्र वोरा जी, आपकी फरमाइश पर। राजेंद्र जी, उम्मीद करती हूँ आपको आपकी पसंद का गाना सुनकर अच्छा लगा होगा, और बहुत सारे और भी गाने हैं जो आप सभी के लिए मैं लाई हुई हूँ। उससे पहले बता देती हूँ, आज का जो सवाल मैंने पूछा था उसका सही जवाब अंग्रेजी में बोल मैंने आपको बताए थे, वन क्लेवर लेडी डूइंग मेकअप, एंटरिंग इन माई माइंड थ्रू द डोर आई एम डाइंग। तो सही जवाब, आप सभी ने सही जवाब भेजा है, बहुत अच्छी नॉलेज है आपके गीतों की। बॉलीवुड की सही जवाब है, एक चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब भेजा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, संगीत तो कुछ देर चलता रहेगा, पर घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि मुझे अब जाना होगा। जाते जाते मेरे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल मेंशन उन सभी को जिन्होंने मैसेज भेजकर मेरा साथ दिया। आज बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे, राजेंद्र वोहरा जी, संदीप जी, तेजा व्यास जी, स्मृति शर्मा, जहीर जी, एकता मनीष, युवीर रिदम एंड सुशीला जी, मीनाक्षी चोपड़ा जी, शिशिर जी और बीना विजय जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा। कल फिर से हम हाजिर हो जाएंगे इसी समय एक नए प्रोग्राम, नई खबरों, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें और मुझे दीजिए इजाजत। SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे स्वाति शर्मा को। शुभरात्रि।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।